प्रस्तुत है प्रेमावतार श्री सत्य साई। इसके अंतर्गत आज हम सुनेंगे भगवान के बाल्यकाल के कुछ अलौकिक प्रसंग, जहां बाबा के दादाजी ने कैसे भगवान के बचपन में ही ये समझ लिया था कि नन्हे सत्या ब्रह्म ज्ञानी हैं, कैसे स्वामी को बचपन से ही दरिद्र नारायणों की चिंता रहती थी एवं बाबा का स्कूल जाना प्रारंभ होता है।
बालक सत्यनारायण बढ़ता गया, चंद ही महीनों में सारे ग्राम में अपने पद चिन्हों की सुगंधित आभा फैलाने लगा। घर में अपने नन्हे सुकोमल पद कमलों के सहारे वह दौड़ने लगा। उसकी मीठी मधुर वाणी और बाल सुलभ शब्दों से सभी के दिल डोलने लगे। बालक सत्यनारायण उस कोमल आयु से ही अपने ललाट पर भस्म रेखाएं अंकित करने के लिए लालायित रहता। कपोल पर का भस्म छीन होने पर बालक रो पड़ता था। अपने विशाल भाल प्रदेश पर गोलाकृति कुमकुम अर्थात शिव शक्ति का प्रतीक लगाने के लिए भी वह हट करता। ईश्वराम्मा की युक्तियों से कुछ समय तक चुप रहकर दोनों बड़ी बहनों के किसी काम से बाहर जाते ही वह उनके प्रसादन कक्ष में जाता और कुमकुम स्वयं अपने भाल पर लगा लेता। बालक का यह विचित्र वर्तन अनेक रूपों में प्रकट होने लगा। जिस घर में मांसाहार बनता वहां वह कदम भी नहीं रखता। इसी कारण ग्राम के लब्ध प्रतिष्ठित वृद्धों ने उसे ब्रह्म ज्ञानी यह उपनाम दिया। संबंधियों के यहां जब मांसाहार बनाया जाता तब बालक सत्य अपनी पड़ोसन ब्राह्मणी कर्णम सुब्बम्मा के घर जाकर भोजन किया करता था। बालक सत्या के संगी साथी उससे मारपीट करते तब वह उनसे कभी प्रतिशोध नहीं लेता था। अपने सहाध्यायी बालकों के प्रति उसे प्रेम था। वह कभी किसी मारपीट का उल्लेख अपने घर वालों के सामने नहीं करता था। हो सकता है कि मारपीट की पीड़ा का अनुभव उसका शरीर करता ही ना हो। उस पर मार पड़ने का समाचार अन्य बालक ही घर वालों तक पहुंचा देते, पर बालक सत्या मौन ही रहता। सत्या हमेशा सत्य को ही पूजता था और सत्य वचन पर ही अडिग रहता था। बड़ों के भय से अनेक बालक असत्य बोलने पर बाध्य हो जाते हैं। मार से बचने के लिए असत्य बोलने में भी वह नहीं हिचकिचाते। प्रशंसा के मोहवश अनेक बालक अपने कपूल कल्पित पराक्रमों का रसीला वर्णन करने लगते हैं, परंतु प्रशंसा एवं निंदा दोनों से दूर रह सत्या सदा सत्य कथन पर ही दृढ़ रहता था। इसी कारण किसी ने उपहास से उसे ब्राह्मण पुत्र कहना आरंभ किया। अपने पूर्व शरीर में अर्थात शिरडी के साई स्वरूप में भगवान ने जो कहा था उसका स्मरण कीजिए। बाबा ने कहा था, यह ब्राह्मण यहां लाखों लोगों को परिशुद्ध पथ पर से उनके लक्ष्य की ओर ले जा सकता है। याद रखो, ब्राह्मण इस नाम के गुणानुसार सत्या का हृदय अन्य लोगों का दुख देखकर द्रवित हो जाता। सड़क पर दूर से ही भिक्षुक को आते देख सत्या दौड़कर घर के भीतर जाता और मुट्ठी भर चावल या अन्य कोई अनाज लेकर भिक्षुक के द्वार पर आने तक प्रतीक्षा करते हुए खड़ा रहता। बालक की यह प्रवृत्ति देखकर भिक्षुकों की भीड़ दिन बा दिन बढ़ती चली गई, साथ ही साथ घर वालों का क्रोध भी बढ़ता गया। भिक्षुकों को भगा दिया गया तब बालक अपने रुदन से आकाश पाताल एक कर देता। उन्हें वापस बुलाकर झोली भरने पर ही बालक सत्या का रोना धोना बंद होता। कई बार ईश्वराम्मा सत्या को धमकाती, इधर उधर भटकने वाले भिक्षुकों को तुम घर पर खींच लाते हो, तुमने फिर कभी ऐसा किया तो तुम्हारे हिस्से का खाना उसे दे दूंगी और तुम्हें भूखा रहना पड़ेगा। पर माता की प्यार भरी धमकी का सत्या पर तनिक भी प्रभाव नहीं पड़ता था। वह भिक्षुकों की सेवा में और जोर शोर से निमग्न होने लगा। जाओ, तुम्हें आज खाना नहीं मिलेगा। इस प्रकार यदि किसी ने कहा हो तो उस दिन सत्य अपना आहार ग्रहण नहीं करता था, स्वेच्छा से उपवास करता था। उसे मनाने के सब प्रयत्न निष्फल होते थे। कभी कभी तो ऐसे उपवास का व्रत लगातार 5-6 दिनों तक चलता रहता, परंतु बालक के शरीर पर उपवास का विपरीत परिणाम नहीं होता था। अन्नपान ना करने पर बालक उसी उत्साह से खेलकूद में मग्न रहता। उसके दिन प्रतिदिन के कार्यकलाप में देह श्रम का कोई चिन्ह दृष्टिगोचर नहीं होता था। थाली में भोजन परोसकर सत्या को बुलाया जाता, तब वह भूख नहीं है कहकर बात को टाल देता। प्रश्न किया जाता, किसने भोजन दिया? तब बालक सत्या जवाब देता, दादाजी ने। उस कथन की सत्यता जांचने के लिए सत्या के हाथ सूंघे जाते, तब उनसे घी, दही, मक्खन आदि की सुगंध आती। सबके मन में यही रहस्य रहता कि आखिर यह भोजन किस प्रकार का है, कौन यह दादाजी है। घर घर में सत्या की प्रशंसा होने लगी। उसका सदैव प्रसन्न रहना, कार्यरत तथा उत्साहित रहना, यह गुण केवल प्रशंसा के पात्र ही नहीं वरन अन्य बालकों के लिए आदर्श रूप अनुकरणीय गिने जाने लगे। अन्य माताएं अपने बालकों के सामने सत्या के गुणों का बखान करती और उनकी तुलना सत्या से करती। बालकों के मन पर इसका प्रभाव पड़ने लगा। किसी बालक ने प्रेम पूर्वक सत्या को गुरु नाम से संबोधित किया, तब से सभी उसे गुरु कहने लगे। राजू परिवार को यह बात मालूम नहीं थी, परंतु रामनवमी के त्योहार पर यह भेद खुल गया। मध्यरात्रि को प्रथा के अनुसार एक जुलूस घर के निकट से निकल रहा था, साथ में नगाड़े, बैंड, भेरी आदि का वाद्य वृंद भी था। एक बैलगाड़ी में प्रभु रामचंद्र जी का चित्र सुशोभित था। पुजारी श्रीफल, कपूर आदि अर्पण कर आरती उतार रहा था। वाद्य वृंद की सुरावलियों से आसपास का जन समुदाय जुलूस की ओर आकर्षित हो रहा था। बहनों ने देखा कि सत्या घर में नहीं है। सत्या को लापता देख लोग परेशान हो गए। चारों ओर ढूंढने पर सत्या का पता लगा। वह भी कैसे? बैलगाड़ी पर सुशोभित रामचंद्र जी के चित्र के पास गंभीर मुद्रा से पद्मासन लगाए सत्या विराजमान था। गाड़ी के चारों ओर से बालकों ने उसे घेर रखा था। ईश्वराम्मा ने पूछा, बच्चों, तुमने सत्या को इस गाड़ी में क्यों बैठाया? तब एक बालक ने उत्तर दिया, वह तो हमारा गुरु है, सत्य है। जगन निवासी सब अवस्था के बालकों का वह गुरु है। हम सभी ईश्वर के बालक हैं। पुट पड़ती में एक छोटी सी पाठशाला थी। सत्या को पाठशाला में दाखिल किया गया, किंतु श्री वेंकप्पा राजू के कथनानुसार लिखाई पढ़ाई की सत्या को कोई आवश्यकता नहीं थी। सत्या का कार्य अनोखा ही था। उदाहरण देते हुए वेंकप्पा राजू कहते हैं, पाठशाला के विद्यार्थी निहित समय पर पहुंचे, इसके लिए वहां के शिक्षकों ने एक प्रथा रखी थी। यह प्रथा संभवतः योग्य ना हो, परंतु पाठशाला पहुंचने वाले बालक अपने आगमन के अनुसार कतार में बैठते थे। प्रथम पहुंचा हुआ बालक प्रथम क्रमांक पर बैठता और बाद में अन्य बालक क्रमानुसार बैठते। पहला बालक आकर गुरुजी को प्रणाम करता, दूसरा बालक उसका अनुसरण करता, परंतु तीसरे बालक को 3, चौथे को 4, पांचवे को 5, इस प्रकार क्रमानुसार प्रत्येक बालक को छड़ी का प्रसाद मिलता था। सभी एक साथ आए तो एक ही पंक्ति में बैठ सकते थे, एक के पीछे एक को बैठने की आवश्यकता नहीं थी। इस मार से बचने के लिए सभी बालक जल्दी उठकर पाठशाला के अहाते में एक ही समय पर इकट्ठे होकर आने लगे। शिशिर एवं वर्षा ऋतुओं में बालक ठिठुरते हुए दीवार के सहारे बैठते थे। अनुकंपा से सत्या घर से कंबल, टॉवल, चादर आदि लाकर पाठशाला पहुंचता और बच्चों में बांट देता। हमें इस बात का पता लगाने पर हमने सब कपड़े संदूक में ताला लगाकर बंद रखने आरंभ किए। तब सत्या का दिल पिघलाने वाला असहाय क्रंदन होता था। छड़ी के प्रसाद की इस अनूठी प्रथा का उपहास करते हुए सत्या ने अनेक गीतों की रचना की। बालकों ने अपने सामूहिक कंठ से उन गीतों का गान किया, फलस्वरूप यह कुप्रथा बंद हो गई। सत्यनारायण की प्रतिभा अपार थी, उसकी ग्रहण शक्ति को देख शिक्षक भी हार मानते थे। घर के ज्येष्ठ व्यक्तियों द्वारा गाए जाने वाले गीतों तथा पदों में त्रुटियां पाकर सत्या ने उन्हें सुधार कर दोष रहित एवं रसीले बनाए। वह भली भांति गा भी लेता। केवल 7-8 वर्ष की आयु में ही सत्या ने अनेकों गीतों की रचना की। इन गीतों को बड़ों ने अपनाया और उनका बखान भी किया। कई गीतों का समावेश नाटकों में भी किया गया, क्योंकि उनकी रचना मनमोहक थी।
अभी आप सुन रहे थे प्रेमावतार श्री सत्यसाई। इस कार्यक्रम की आज की कड़ी में हमने भगवान बाबा के बाल्यकाल से जुड़े कुछ प्रसंग सुने, जिसमें बाबा का स्कूल जाना प्रारंभ होना, उनका भिक्षुकों के लिए बाल्यकाल से ही द्रवित हो जाना एवं स्वामी के दादाजी को बाबा के ब्रह्मज्ञानी होने का आभास लग जाना इत्यादि शामिल थे।